समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
दोस्ती, मोहब्बत और रिश्ते पाए तो हर जगह जाते हैं, मगर ठहरते सिर्फ वहीं हैं जहां इन्हें आदर मिलता है। कई बार तबीयत दवा लेने से नहीं, हाल पूछने से ही ठीक हो जाती है। तो बताइए, कैसे हैं आप? न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे के आज के अंक में आपके साथ मैं हूं नईम अख्तर और साथ हैं तन्वी खुराना। सभी सुनने वालों को और तन्वी आपको भी नमस्कार।
नमस्कार नईम, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज़ एंड द ऐप entire Akashwani network. A very good morning to all of you. Well, like Naeem said, we are here with our daily news magazine program Aaj Savere, and this next half an hour is going to be really interesting because we have some news, some metro city updates, some historical information related to this particular day, that is 3rd of October, and much more. And because it is a Tuesday, and when we started in the morning, did you realize that there's a coldness, there's a breeze?
Yeah.
इन द वेदर एंड
मौसम बदल रहा है,
राइट? और बहुत ही अच्छा मौसम लग रहा था, एंड आई एम श्योर ऑल द पीपल हु स्टार्टेड देयर डे अर्ली इन द मॉर्निंग दे ऑल्सो रियलाइज्ड इट। सो लेट्स होप दैट वी हैव अ लवली डे अहेड विद ब्राइट सनी एंड मे बी अ लिटिल कोल्डनेस टू।
और इसके बारे में हम बात करेंगे अपने मौसम वाले सेगमेंट में।
एब्सोल्युटली। सो फॉर नाउ लेट्स बिगिन आवर प्रोग्राम विद द हेडलाइंस।
राइट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के आदिवासी बस्तर संभाग के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में 26,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। हमारे रायपुर संवाददाता ने खबर दी है कि प्रधानमंत्री बस्तर के नगरनार में स्थापित एनएमडीसी के ग्रीनफील्ड स्टील प्लांट को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वो छत्तीसगढ़ के जनजातीय बहुल बस्तर जिले के नगरनार में स्थापित राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एनएमडीसी के जिस इस्पात संयंत्र का लोकार्पण करेंगे, वहां उच्च गुणवत्ता वाला इस्पात निर्मित होगा। ये संयंत्र करीब 24,000 करोड़ रूपये की लागत से बनकर तैयार हुआ है। इस संयंत्र में और इससे जुड़े सहयोगी उद्योगों में हजारों लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। प्रधानमंत्री अपने जगदलपुर प्रवास के दौरान जगदलपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखने के लिए अंतागढ़ तारोकी के बीच नई रेल लाइन और जगदलपुर दंतेवाड़ा के बीच डबल रेल लाइन परियोजना का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा तारोकी रायपुर के बीच रेल सेवा का भी शुभारंभ करेंगे। इन परियोजनाओं से इस जनजातीय इलाके में रेल कनेक्टिविटी में सुधार होगा और इलाके के आर्थिक विकास को गति मिलेगी।
Union Minister of State for Science and Technology Dr. Jitendra Singh has said that India's stature in space research is growing day by day and is now competing with the space elites. Felicitating ISRO scientists at an event in New Delhi yesterday, Dr. Singh said ISRO is now considered a leading space agency in the world despite the time advantage NASA and other space agencies once enjoyed. He added that countries like the United States and Russia, who once looked down on India, now want to partner up. Addressing the gathering, Lok Sabha Speaker Om Birla said that India needs cooperation from dedicated individuals and organizations to lead in the science and technology sector.
चिकित्सा या शरीर क्रिया विज्ञान क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार हंगरी मूल की अमरीकी प्रोफेसर कैथरीन कारिको और अमरीका के प्रोफेसर ड्रीयू वाइजमैन को संयुक्त रूप से प्रदान किया जाएगा। इन दोनों वैज्ञानिकों ने ऐसी प्रौद्योगिकी विकसित की जिससे एमआरएनए आधारित कोविड टीकों का निर्माण संभव हो सका। इसी एनआरएनए प्रौद्योगिकी पर कैंसर सहित अन्य बीमारियों के लिए भी अनुसंधान हो रहा है। एमआरएनए तकनीक पारंपरिक टीकों से अलग है। कोविड महामारी के दौरान मॉडर्ना, फाइजर और बायोएनटेक टीके एमआरएनए तकनीक पर आधारित थे।
In Jammu and Kashmir, Lieutenant Governor Manoj Sinha attended the Sanskriti Mahotsav, featuring prominent folk dancers of Karnataka at Srinagar yesterday. In his address, the Lieutenant Governor welcomed the artists from Karnataka to the Union Territory and commended the endeavour of the J&K Academy of Art, Culture and Languages to promote rich diversity and uniqueness of ageless Indian culture and the cultural interlinkages between J&K, UT and Karnataka.
मौसम विभाग ने कहा है कि अगले दो से तीन दिन के दौरान बिहार, झारखंड, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम, उत्तरी ओडिशा, उत्तरी छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा जारी रहने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा क्षेत्र में आज गरज और बिजली के साथ वर्षा होगी। अगले दो दिन में असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरूणाचल प्रदेश में तेज वर्षा की संभावना है। तमिलनाडु और केरल में भी तेज वर्षा की आशंका है। अगले दो दिन के दौरान देश के शेष हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मॉनसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं।
In Punjab, the state government had launched the statewide Swachhta Hi Seva campaign with the theme Garbage Free India from 15th of September to 2nd of October. The campaign was a joint initiative by the Ministry of Jal Shakti and Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India, under the flagship programs of Swachh Bharat Mission Grameen and Swachh Bharat Mission Urban, respectively. The state government yesterday honored best performing panchayats, schools and Safai Sevaks in cleanliness and other related activities during this campaign. In Asian Games 2023 being held in Hangzhou, China, India bagged 3 silver and 4 bronze medals on day 9. With this, the overall tally of the country rose to 60 medals, 13 gold, 24 silver and 23 bronze. India currently stands at the 4th position on the scoreboard. The Indian men's cricket team will make its Asian Games debut against Nepal in the quarterfinal today. Team India has won the toss and chose to bat first. In badminton, PV Sindhu, a two-time Asian Games bronze medalist, and HS Pranoy will start their singles campaign. In kabaddi, as seven-time champions, India will kick off against Bangladesh in the men's event. The Indian women's team, meanwhile, will look to bounce back against the Republic of Korea. World champion boxer Lovlina Borghain can secure a women's 75kg Olympic quota today with a win in the semi-final. Preeti Pawar in women's 54kg and Narendra in men's plus 92kg will also punch for a final spot. In athletics, several exciting events have been lined up today as the Asian Games enter its day 10th. They include 110-meter hurdles, discus throw, pole vault and javelin throw.
आज सवेरे में प्रमुख महानगरों से जुड़ी मुख्य खबरें हैं। तन्वी, आपके पास चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद से जो खबरें हैं उसी से शुरुआत करते हैं।
लेट्स बिगिन विद चेन्नई फर्स्ट। तमिलनाडु एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट इज सेलिब्रेटिंग द नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक फ्रॉम 2nd ऑफ अक्टूबर टू 8th ऑफ अक्टूबर टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड स्पीशीज। इन अ सोशल मीडिया पोस्ट, सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट सुप्रिया साहू सेड दैट देयर फोकस वुड बी ऑन कंजर्वेशन ऑफ लेसर नोन क्रिटिकली एंडेंजर्ड wild animals found not only in terrestrial ecosystems but in marine ecosystems. The department has already notified conservation reserves for slender loris, dugongs, elephants and birds and started projects saving the nilgiris, dhar and turtles. More efforts will be made by setting up conservation centers and their habitat protection. Karnataka Governor Thavarchand Gehlot inaugurated the enthralling Gandhi Jayanti Stha and Ahimsa Mahotsav at the banquet hall of Raj Bhavan in Bangalore yesterday. It was a spectacular tribute to Mahatma Gandhi on the occasion of his birth anniversary and International Day of Non-Violence. The celebration was organized jointly by Doordarshan Bangalore and the Governor's Secretariat, unfolding an ode to the enduring principles of truth and non-violence. The event commenced with the resonant strains of the national anthem, setting the tone for the night steeped in Gandhian philosophy. Governor Thavarchand Gehlot paid his respects by garlanding Gandhi's statue and illuminating the ceremonial lamp. The Pikashri Khan's troupe, in a performance, presented Gandhiji's cherished bhajans Vaishnava Janto and Raghupati Raghav Raja Ram. The mesmerizing Bharatnatyam renditions by Neha Sulad, Tisha Sharma, Rudraka Sharma and Rudranshi Sharma showcased various Ganpati Vandana dance motifs. And let's talk about Hyderabad now. Telangana State Government has constituted the second Pay Revision Committee, that is PRC, to make recommendations for new pay scales to the state government employees. Chief Minister K. Chandrasekhar Rao has announced the decision yesterday in Hyderabad. The two-member committee, with retired IAS officer N. Shivashankar as chairman and another retired IAS officer B. Ramaya as member, has been appointed, and State Chief Secretary Shanti Kumari issued orders to this effect. The committee has been advised to submit its report in 6 months. The committee will consider the current pay scales of Telangana employees and of other states and central government in this regard. It will also study the state revenue growth and its commitments for ongoing and future investments, development programs and welfare schemes. It may be recalled that the government decided to pay 5% interim relief, that is IR, to state government employees. So these were the updates from Hyderabad, Bengaluru and चेन्नई. तो वी हैव फ्रॉम दिल्ली, मुंबई एंड कोलकाता. नहीं
जी, मैं बताती हूँ. और पहले दिल्ली की खबरों से शुरुआत करते हैं. दिल्ली पुलिस ने एक इनामी आतंकी को गिरफ्तार किया है जो पुणे आईएसआईएस मॉड्यूल का सदस्य भी था. वो राष्ट्रीय जांच एजेंसी की मोस्ट वांटेड सूची में था और उस पर 3 लाख रूपये का इनाम था. दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने मॉड्यूल के कुछ अन्य सदस्यों को भी हिरासत में लिया है. मॉड्यूल विदेश सहित हैंडलर्स से निर्देश लेकर उत्तर भारत में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की योजना बना रहा था. पुलिस ने आईईडी निर्माण के लिए इस्तेमाल होने वाली संदिग्ध सामग्रियों सहित आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है. दिल्ली से एक और खबर यह है कि दिल्ली पुलिस ने अक्षरधाम फ्लाईओवर के पास से मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी के पास से 20 ग्राम से अधिक एमडीएमए नामक नशीला पदार्थ और 54,000 रूपये जब्त किए हैं. दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना राजधानी के कुतुबगढ़ आदर्श गांव में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास करेंगे. इस खेल परिसर में जॉगिंग ट्रैक, ओपन जिम, कबड्डी, अखाड़ा, बैडमिंटन और वॉलीबॉल जैसे खेलों के लिए स्पोर्ट कोर्ट उपलब्ध होंगे. इसके अलावा खिलाड़ियों के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी. खेल परिसर के निर्माण कार्य को इस महीने के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. साहित्य अकादमी ने रविन्द्र भवन में पर्यावरण और साहित्य विषयक साहित्य मंच कार्यक्रम का आयोजन किया. स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रख्यात कवि और कला समीक्षक प्रयाग शुक्ल ने की. कार्यक्रम में कई अन्य प्रख्यात विद्वानों ने पर्यावरण को लेकर अपने विचार व्यक्त किए. साहित्य अकादमी के सचिव के श्रीनिवास राव ने कार्यक्रम में शामिल सभी वक्ताओं को सम्मानित किया. और मुंबई की तरफ आएं तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घोषणा की है कि जल्द ही सफाई कर्मचारियों की कॉलोनियों का कायापलट किया जाएगा. मुंबई के विभिन्न वार्डों में स्वच्छता अभियान के निरीक्षण के तहत सीएम शिंदे ने सोमवार को स्वच्छता कर्मचारी कॉलोनियों का दौरा और स्वच्छता अभियान की समीक्षा की. उन्होंने निर्देश दिए कि इन कॉलोनियों में सुविधाओं की समीक्षा तत्काल एक स्वतंत्र टीम से कराई जाए. मुख्यमंत्री ने इस क्षेत्र में 2 भवनों के रुके हुए निर्माण को पूरा करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया. इसके लिए उन्होंने कहा कि 2 शिफ्ट में काम शुरू किया जाए. उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि इस क्षेत्र की मुख्य सड़क आंतरिक सड़कों को विशेष समय में पूरा किया जाए. इन कॉलोनियों में शौचालय और वॉशरूम की हालत सुधारने के भी निर्देश उन्होंने दिए. महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के पुलिस आयुक्त के पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए मिशन कर्मयोगी पहल के तहत एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की प्रशासनिक मंजूरी दे दी है. कार्यक्रम के उद्देश्य नागरिकों की सेवा करने के लिए प्रेरणा पैदा करना है. केंद्र सरकार की क्षमता निर्माण आयोग के तहत मिशन कर्मयोगी को सभी सरकारी अधिकारियों को विश्व स्तरीय क्षमता निर्माण के अवसर प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है. और एक खबर लेते हैं हम कोलकाता से. कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने गांधी जयंती सत्य और अहिंसा महोत्सव का उद्घाटन किया और इसके बाद उन्होंने गांधी जी की प्रतिमा पर माला चढ़ाकर और दीप जलाकर भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. आकाशवाणी दिल्ली के गोल्ड चैनल पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे नई मख्तर और तन्वी खुराना के साथ. कार्यक्रम में अब वक्त हुआ है प्रमुख महानगरों के मौसम का हाल जानने का. तो सबसे पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का मौसम. आमतौर पर यहां आसमान साफ रहेगा. न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 36 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। मुंबई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और बूंदाबांदी हो सकती है। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 33 डिग्री के आसपास रहेगा और कोलकाता में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे, गरज के साथ हल्की बौछारें पड़ने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 30 डिग्री के आसपास रहेगा।
चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव थंडरस्टॉर्म विद रेन। द मिनिमम टेम्परेचर वॉज 26 डिग्रीज एंड द मैक्सिमम विल बी अराउंड 35 डिग्रीज। बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई विद light rain. The minimum temperature was 20 degrees and the maximum will be around 29 degrees. Hyderabad is also expected to have generally cloudy sky with light rain or drizzle. The temperature will hover between a minimum of 23 degrees and a maximum of 30 degrees Celsius.
और अब वक्त है कि देश दुनिया की कुछ मजेदार और रोचक खबरें जान ली जाए, तो सुनते हैं कार्यक्रम दुनिया रंग बिरंगी।
नमस्कार। न मंजिल को न रह गुजर को देखते हैं, अजब सफर है कि बस हम सफर को देखते हैं। यात्राओं के दौरान इंसान को जीवन के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जो ऑफिस के बंद केबिन में या फिर जमा देने वाले एसी के नीचे बैठकर काम करने पर कोई नहीं सीख सकता। इस वजह से बहुत से लोग ट्रैवलिंग को ही अपने जीवन में प्राथमिकता देते हैं, पर अमरीका की रहने वाली एक महिला इन सभी लोगों से एक कदम आगे बढ़कर ट्रैवलिंग के नए आयाम रचने लगी है। वो इसलिए कि महिला ने अपनी नौकरी को छोड़ दिया और नौकरी छोड़कर वो दुनिया घूमने निकल गई और अब लोगों को अपनी तरह ही ट्रैवलर बनने के तरीके सिखा रही है। आपको बता दें, डेली स्टार न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार न्यूयॉर्क की रहने वाली समांथा ओपहाइमर ने 5 साल पहले यानी 2018 में अपनी नौकरी को अलविदा कह दिया था। वो न्यूयॉर्क में एक कंपनी में मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करती थी। अचानक ही एक दिन उसने जॉब छोड़ दी और दुनिया घूमने निकल गई। नौकरी छोड़ने के बाद से आज तक वो करीब 23 देशों की यात्रा कर चुकी है और खुद का एक ट्रेवल ब्लॉग भी चलाती है। समांथा ने बताया है कि वो अलग अलग काम करके अपनी यात्रा करने के लिए पैसों का प्रबंध करती है। कभी वो लोगों के लिए पेट सिटिंग करती है यानी किसी पालतू जानवर की देखभाल करना, कभी वो हॉस्टल में रुककर वॉलंटियर का काम करती है और उनके काम में हाथ बटाती है, और साथ ही वो एक ऑनलाइन स्टोर भी चलाती है जिसके जरिए वो छत पर लगने वाले टेंट्स बेचती है।
जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम।
भाई, नमक बेहद जरूरी पदार्थ है जिसका इस्तेमाल खाने में किया जाता है, और हम ये भी जानते हैं कि नमक को लेकर कई लड़ाइयां लड़ी गईं। हमने अपने इस्तेमाल के लिए नमक बनाना सीखा है, लेकिन क्या ये जरूरी है कि नमक को बाजार से ही खरीदा जाए? जिस प्रकार से लोग अपने बागीचे में फल और सब्जियां उगाते हैं ताकि उन्हें बाजार से खरीदने की जरूरत न पड़े, तो क्या उसी प्रकार से नमक भी खुद ही बनाया जा सकता है? तो आपको बता दें, श्रोताओं की इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति अपने घर में इस्तेमाल करने के लिए खुद से नमक बनाता दिख रहा है। इस वीडियो में उसने पूरे प्रोसेस को भी समझाया है। आपको बता दें कि ये व्यक्ति समुद्र में एक प्लास्टिक के जार में समुद्र का पानी भरता है और फिर उस पानी को घर लाकर उसे छन्नी से छानता है और फिर उबालने लगता है। पानी उबलते उबलते जब कम हो जाता है और अंत में सिर्फ नमक ही बचता है, तब वो नमक को निकाल करके बेक कर लेता है। बेक करने के बाद रिफाइन किया हुआ सी सॉल्ट यानी कि समुद्री नमक बन के तैयार हो जाता है, जिसे वो अपने इस्तेमाल में लेकर के आता है, जिसका वो अपने घर पर इस्तेमाल करता है। तो भाई, हम तो यही कहेंगे,
समुंदर समुंदर यहाँ से वहाँ तक ये मौजों की चादर, बिछी आसमां तक मेरे मेहरबान, मेरी हद है कहाँ तक, यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक।
ये मौजों की चादर बिछी आसमां।
श्रोताओं, इंसान जीवन भर इसलिए कमाता है ताकि बूढ़े होने पर पैसे उसके काम आए और अपनी जरूरतें वो पूरी कर सके। लेकिन चीन में एक बुजुर्ग कपल ने जो किया है वो दिल छू लेने वाला है। पूरी जिंदगी उन्होंने पैसे कमाए और खूब बचत की, यहाँ तक कि दशकों से नए कपड़े भी नहीं खरीदे और वे पुराने बंगले में रहते थे, पुराने फोन का ही इस्तेमाल करते थे और मात्र कुछ डॉलर की कीमत के जूते ही पहनते थे ताकि सेविंग कर सकें। लेकिन एक दिन अचानक उन्होंने 12 करोड़ रुपए की अपनी पूरी सेविंग अपने गांव को दान कर दी ताकि बच्चों की शिक्षा के लिए वहां कुछ सुविधाएं जुटाई जा सकें। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार हुबोई की रहने वाली 90 वर्षीय मा जू और उनके पति यान जुआंग एंग की कहानी इन दिनों चीन में छाई हुई है। मा जू चीन की पहली महिला ट्रूपर्स में से एक थी। नौकरी के दौरान ही उनकी मुलाकात यान से हुई, जो एक पूर्व पैराट्रूपर भी थे। दोनों ने अपना पूरा जीवन सेना के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान करने के उद्देश्य से समर्पित कर दिया। दोनों ने मिलकर सैनिकों के लिए सुरक्षात्मक कवर और ऑक्सीजन जैकेट बनाए, लेकिन दोनों बचत को प्राथमिकता देते थे और अपने ऊपर बहुत ही कम पैसा खर्च करते थे। तो एक दिन उनके मन में ख्याल आया कि क्यों न अपनी पूरी प्रॉपर्टी गांव के बच्चों के लिए दान कर दी जाए, और इसके लिए एक दिन वो अपने गृह नगर मुलान काउंटी पहुंचे और स्थानीय लोगों से इस बारे में चर्चा की और फिर पूरी संपत्ति दान कर दी।
अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए।
तो श्रोताओं, दुनिया रंग बिरंगी में आज बस इतना ही। इस कार्यक्रम के बारे में यदि कोई जानकारी आप हमसे साझा करना चाहते हैं तो आप हमें duniyarangbirangi10@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं। मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।
और अब बात आज के दिन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की जो इतिहास में दर्ज हैं। अगर आज के दिन यानी 3 अक्टूबर की बात की जाए तो 1735 में फ्रांस के छठे कैरल सम्राट ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए।
इन 1831 ब्रिटिशर्स कैप्चर्ड मैसूर।
1880 में पहले मराठी संगीत नाटक संगीत शकुंताल का पुणे में मंचन किया गया। 1932 में इराक यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्र हुआ।
इन 1957 रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया गॉट एस्टैब्लिश्ड। इन 1978 डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय क्लेम्ड द क्रेडिट ऑफ इंडियाज फर्स्ट एंड द बर्थ ऑफ वर्ल्ड्स सेकेंड टेस्ट ट्यूब बेबी दुर्गा अग्रवाल, हु वॉज बॉर्न इन बेलव्यू नर्सिंग होम इन कैलकाटा। एंड इन 1984 इंडियाज लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रेन हिमसागर एक्सप्रेस फ्रॉम जम्मू तवी टू कन्याकुमारी वॉज फर्स्ट फ्लैग्ड।
और 1992 में गीत सेठी ने विश्व पेशेवर बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीती थी। और तन्वी, अब वो वक्त हो गया है जिसमें हमारा लास्ट सेगमेंट होता है, जिसमें हम बात करते हैं कुछ उन हस्तियों की जिनकी आज पुण्यतिथि जयंती या जन्मदिन है। तो शुरुआत करते हैं पुण्यतिथि से। कादम्बिनी गांगुली की आज पुण्यतिथि है, जिनका जन्म 18 जुलाई 1861 को भागलपुर बिहार में हुआ था और मृत्यु यानी आज ही के दिन 3 अक्टूबर 1923 को कोलकाता में हुई थी। वो भारत की पहली महिला स्नातक और पहली महिला फिजिशियन थी। कांग्रेस अधिवेशन में सबसे पहले भाषण देने वाली महिला का गौरव भी कादम्बिनी गांगुली को ही प्राप्त है। कादम्बिनी गांगुली पहली दक्षिण एशियाई महिला थी जिन्होंने यूरोपियन मेडिसिन में प्रशिक्षण लिया था। उन्होंने कोयला खदानों में काम करने वाली महिलाओं की लचर स्थिति पर भी काफी काम किया था।
Today is the birth anniversary of Stevie Ray Vaughan. Born in 1954, he was an American musician best known as a guitarist and frontman of the blues rock trio Stevie Ray Vaughan and Double Trouble. Although his mainstream career spanned only 7 years, he is regarded as one of the most influential musicians in the history of blues music and one of the greatest guitarists of all time. He was the younger brother of guitarist Jimmy Vaughan. So let's hear him play.
I आज ही तन्वी अमृतलाल बेगड़ की भी जयंती है। 3 अक्टूबर 1928 को जबलपुर में उनका जन्म हुआ था और 6 जुलाई 2018 में उनकी मृत्यु हुई। प्रसिद्ध साहित्यकार, चित्रकार और नर्मदा प्रेमी थे अमृतलाल बेगड़। उन्होंने नर्मदा संरक्षण में उल्लेखनीय भूमिका निभाई थी। अमृतलाल बेगड़ ने पर्यावरण संरक्षण के लिए उल्लेखनीय काम किया। नर्मदा की 4,000 किलोमीटर की पदयात्रा की, नर्मदा अंचल में फैली बेशुमार जैव विविधता से दुनिया को परिचित कराया। उन्होंने 1977 में 47 साल की उम्र में नर्मदा परिक्रमा करनी शुरू की, जो 2009 तक जारी रही।
Today is the birthday of Kevin Richardson, born in 1971, an American singer and actor best known as a member of vocal group The Backstreet Boys. Richardson was inducted into the Kentucky Music Hall of Fame with his cousin and bandmate Brian Littrell in 2015. At a young age, Kevin loved music and started learning how to play the piano by ear when he was only 9 years old. So let's hear him. His song, She's Got Away, here it comes.
She's got a way about her. Don't know what it is, but I know that I can't live without her. She's got a way of pleasing. I don't know why it is, but there doesn't have to be reason anyway. She's got a smile.
It is also the birthday of Gwen Stefani, born in 1969, an American singer and also songwriter. She's a co-founder, lead vocalist and the primary songwriter of the band No Doubt, whose singles include Just a Girl, Spiderwebs and Don't Speak from their 1995 breakthrough studio album Tragic Kingdom, as well as Hey Baby and It's My Life from later albums. She has won 3 Grammy Awards, so let's hear one of her best tracks, and that is Rich Girl. Also the birthday of Lena Headey. Born on this day, that is 3rd of October in 1973, she is a British actress. She gained international recognition and acclaim for her portrayal of Cersei Lannister on the HBO epic fantasy drama series, that is Game of Thrones, which started in 2011 and ended in 2019, for which she received 5 Primetime Emmy Award nominations and a Golden Globe Award nomination, and also Queen Gorgo in 300. So we have a dialogue from the same series. Let's hear it.
The north cannot be held, not by an outsider. It's too big and too wild. And when the winter comes, the 7 gods together couldn't save you and your royal army. A good king knows when to save his strength and when to destroy his enemies.
और तन्वी, अगर हम वापस भारत में आए तो आज एक बहुत बड़ी हस्ती का जन्मदिन है।
Thank you.
क्या सोच रहे हैं आप, अभिषेक बच्चन का या करीना कपूर का जन्मदिन है? बिल्कुल नहीं, हम बात कर रहे हैं ज्योति प्रकाश दत्ता की, जिनका आज जन्मदिन है। अब ज्योति प्रकाश दत्ता कौन है ये मत पूछिएगा, क्योंकि उन्हें आप और हम जेपी दत्ता के नाम से जानते हैं और वो भारत के हमारी हिंदी फिल्मों के बहुत मशहूर और बहुत बड़े निर्माता निर्देशक हैं। खासतौर पर उन्होंने जो फिल्में बनाई हैं उनमें ज्यादातर फिल्में देशभक्ति के जज्बे से भरी हुई हैं, और ये रिफ्यूजी फिल्म जिसका गीत अभी आप सुन रहे हैं ये भी उसी तरह की उसी पैटर्न पर बेस्ड एक फिल्म है। ज्योति प्रकाश दत्ता यानी जेपी दत्ता का जन्म 3 अक्टूबर 1949 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था, और जब भी हम जेपी दत्ता का नाम लेते हैं तो आंखों के सामने बॉर्डर, एलओसी कारगिल और 2006 की उमराव जान जैसी फिल्में एकदम आ जाती हैं। हिंदी सिनेमा में जेपी दत्ता ने बहुत कम फिल्में बनाई हैं, लेकिन उनकी फिल्में हमेशा सबसे हटकर होती थी। जेपी दत्ता ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1985 में फिल्म गुलामी से की थी और उसके बाद कई फिल्में बनाई, जिनमें कुछ फिल्में जो थी उनके गीत आप हम आपको सुना रहे हैं, आप ये सुनिए। और वक्त हो चुका है अब अपने श्रोताओं से अनुमति लेने का, तो नईम अख्तर और तन्वी खुराना को इजाजत दीजिए कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की। आप सुनते रहिए आकाशवाणी गोल्ड,
स्टे ट्यून्ड फॉर कमिंग अप नेक्स्ट समाचार प्रभाता हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15 AM। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन, हैव अ सुपर्ब डे, नमस्कार।